नमो ताई जाति भये अर्हन्तादि महान् जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस लक्षण महापर्व के निमित्त से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। वैसे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के विचार की ये प्रक्रिया, ये विचार की यात्रा बहुत दिनों से हम एक साथ मिल बैठकर कर ही रहे हैं, पर ये विशेष अवसर है। और हमने पिछले दिनों अपनी क्षमता बढ़ाई है, हमने अपने भीतर जो भी बुराइयां हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्न भी किया है, और ऐसे प्रयत्न में हमारे भीतर गुणवत्ता भी बढ़ी है। और वास्तव में किसी भी पर्व और किसी भी आयोजन की, या मैं तो सोचता हूँ कि हमारे अपने जीवन की सार्थकता ही इस बात में है कि हमारी गुणवत्ता बढ़ती चली जाए और हमारे भीतर से अवगुण निकलते चले जाएं। किसी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया कि व्यक्ति के भीतर कैसे कैसे गुण बढ़ते चले जाने चाहिए। 9 बरस की उम्र में उसके पास कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो उससे दूने वर्ष का हो जाए 18 का, तो एक गुण तो आ ही जाना चाहिए, 8 अवगुण हैं। 27 का होने पर 2 गुण, 7 अवगुण, 36 का होने पर 3 गुण, 6 अवगुण, और अगर बढ़ाते जाएं तो 90 साल के होते होते गुण पूरे हो जाएं और अवगुण शून्य हो जाएं। ऐसा एक विचार दिया, अच्छा लगता है। इससे हमें ये मदद लेनी चाहिए कि हमारा जैसे जैसे जीवन बढ़ता चला जाए, हमारा अनुभव बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे हमारी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जानी चाहिए। हमारी आसक्ति और हमारे संसार बढ़ाने की प्रक्रिया धीरे धीरे हमें छोड़ते चले जाना चाहिए। बस यदि हम गुणों को छोड़ने का मन बना लें, ग्रहण ना करें, तो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि हम अवगुणों को छोड़ने का मन बना लें और अवगुणों को ग्रहण ना करें, तो उसी का नाम तो त्याग है। और बहुत सारी चीज़ें तो हम छोड़ते हैं भैया, क्या क्या नहीं छोड़ते हम। जो हमारे लिए वेस्ट है वो तो हम हमेशा छोड़ते हैं, लेकिन क्या हम अपने अवगुणों का त्याग करके और गुणों का संग्रहण और संचय करने की कोई प्रक्रिया पर विचार करना पसंद नहीं करेंगे? करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने क्या संचित किया। 4 ठो सिक्के सोने और चांदी के, थोड़ा सा भवन, या कि और बहुत सारी चीजें जिनको कि हम संचित और संग्रहित करके रखते हैं, क्या वास्तव में वो संग्रह हमारे लिए जीवन और आगे के लिए भी क्या लाभकारी है या नहीं है। ग्रहण तो करें, लेकिन कौन सी चीज का ग्रहण करें और कौन सी चीज को हम ग्रहण करने से इनकार कर दें। जब ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं, वास्तव में उसी का नाम त्याग है। ग्रहण करने के बाद छोड़ना, सामान्य रूप से तो त्याग इसी को माना जाता है, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बैठो तो वो कहते कि छोड़ने में तो अहंकार आ सकता है, अपने आप को उससे छुड़ा लो। छूट गए, इस बात का धन्यवाद और इस बात की कृतज्ञता ज्ञापित करो अपने मन में कि कल तक दुनिया भर की चीजें ग्रहण करते थे, अच्छा हुआ कि आज उसके ग्रहण करने से हम बच गए हैं। लेकिन वास्तव में उत्तम त्याग तो यही कहलाएगा कि हम ग्रहण ही ना करें, और ग्रहण अगर हमने कर लिया है तो फिर हम ध्यान रखें कि वो ग्रहण किस प्रकार का है। आचार्य भगवंतों ने दो तरह की प्रक्रिया रखी है कि जो हमारे पास है उसे अपने लाभ के लिए छोड़ देना या उससे अपने को छुड़ा लेना। वास्तव में तो शब्द यही होना चाहिए, छोड़ देने में तो थोड़ा अहंकार झलकता है कि मैंने छोड़ा था क्या हमारा यहाँ पर, जिसको कि छोड़ने का हम अहंकार करें। हम ही छूट गए कल तक भ्रमवश जिन जिन चीजों को इकट्ठा करते और अपना मानते थे, आज ज्ञान हो गया, लगता है ये मेरी अपनी नहीं है, मैं उनसे हट गया, मैंने अपना ममत्व उसमें से निकाल लिया। वास्तव में तो त्याग यही है, इससे आत्म शांति मिलती है। लेकिन जब तक जीवन में ये त्याग घटित नहीं हुआ तब तक क्या करें, तो देव ग्रहण भी करो तो देते भी जाओ। दोनों चीजों का एक बहुत अच्छा जीवन में संतुलन अगर बन जावे, ग्रहण का और त्याग का या कि दान का, तो वह भी त्याग धर्म ही कहलाएगा। आत्म शांति के लिए जब हम राग द्वेष और विकारी भावों का त्याग कर देते हैं तब वास्तव में वो त्याग है। लेकिन उन विकारी भावों पर नियंत्रण के लिए परिग्रह से निवृत्त हो जाना तो त्याग है, लेकिन परिग्रह का पूरी तरह निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसका नियंत्रण तो कर ही सकते हैं। तो अपने परिग्रह का नियंत्रण कर लेने की प्रक्रिया का नाम ही तो दान है, और इसीलिए त्याग धर्म के अंतर्गत दान को भी शामिल किया गया है कि वास्तव में तो अपने को सब चीजों से विमुख कर लेना था, लेकिन यदि ऐसा ना हो पाए तो ग्रहण और साथ में देना, उस रूप में हम अपने त्याग धर्म का पालन कर सकते हैं। देने की प्रक्रिया बहुत विचारणीय है। हम दूसरे को देते हैं तो प्रति उपकार की भावना या कि तिरस्कार की भावना से भी दे सकते हैं, उसे तामसिक दान माना गया है, जिसमें हम दूसरे को तिरस्कार करके और देते हैं कि तुम भी क्या कहोगे ले लो, या कि संक्लेश पूर्वक जब हम किसी चीज को दूसरे को देते हैं और या कि उससे अपेक्षा रखते हैं कि मुझे फिर मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये डोनेशन नहीं है। जहां की थोड़ी भी प्रति उपकार की भावना है और देते समय और देने के बाद भी संक्लेश है और सामने वाले की अवज्ञा अवमानना या तिरस्कार पूर्वक दिया जा रहा, अपने को बड़ा मान करके दूसरे को क्षुद्र और छोटा मान करके दिया जा रहा है, तो ऐसा जो दान है वो त्याग धर्म के अंतर्गत तो नहीं आएगा। बहुत विचार करने की चीज है। हम लोग देते हैं, देने की होड़ में देते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि देने वाले को नीचा दिख, पाने वाले को नीचा दिखाने की भावना से तो नहीं देते हैं, और भीतर ही भीतर कहीं देते समय अपने अहंकार को पुष्ट करने की भावना से तो नहीं देते हैं। अगर ऐसा है कि हम अहंकार वश देते हैं तब वह दान भी राजसिक दान कहलाता है। इस तरह के दान में भी त्याग धर्म का पालन नहीं होता। ये दोनों सावधानियां रखनी चाहिए। आज इस तरह के दान बहुत देखने में आते हैं। बहुत थोड़े से दान हैं जिनमें कि व्यक्ति अपना कर्तव्य मान करके और सामने वाले ने ग्रहण कर लिया ऐसे कृपा मान करके जब देता है, जब वो लेने वाले को अपने से बड़ा मानता है, तब समझना चाहिए कि वास्तव में त्याग धर्म सफल हो गया। एकाध बार जीवन में ऐसा भाव भी बनाना चाहिए। वैसे बनता तो है ऐसा भाव, कभी कभी बनता है कि जब हम ये कृपा मानते हैं कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया, आप यदि लेने से इनकार कर देते तो मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मेरा देना सार्थक आपने कर दिया है क्योंकि आपने ले लिया है। विनोबा ने लिखा कि किसी को अगर भूख नहीं लगती तो हम तो कभी अतिथि सत्कार ही नहीं कर पाते। बहुत अच्छा हुआ कि जो आपको भूख लगी इसलिए हमें अतिथि सत्कार का अवसर मिला। ऐसे ऐसे अत्यंत कृतज्ञता के भाव से जो दान दिया जाता है वही त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। आचार्य महाराज से एक बार सन 80 में लोगों ने कहा कि महाराज कभी कभी तो आपको भी जो है लोगों के सामने हाथ आगे करना पड़ता है और आपका हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। तब आचार्य महाराज ने बड़ा बढ़िया हंस करके जवाब दिया था कि भले ही देने वाले का हाथ ऊंचा रहे लेकिन देखो कांपता कौन सा रहता है, नीचे वाला कि ऊपर वाला। ऊपर वाला कांपता रहता कि अगर बंद कर लिया तो क्या कर लेंगे, रखे रहो अपने पास, नहीं ले रहे। लेने वाला वहां पर बड़ा है, ऐसे सम्मान की भावना से जैसे मुनि जनों को हम दान देते हैं कि आपने ले लिया, हम पर कृपा कर दी, आप नहीं लेते तो हम क्या कर लेते। ऐसे ही दान की हमारे यहाँ पर परंपरा रही। ऐसे दान तीर्थ की स्थापना सबसे पहले अपन लोग आदिनाथ भगवान के समय में जो राजा हुए हैं श्रेयांस और सोम, उनके भाई, उन दोनों ने शुरुआत की थी। वही त्याग धर्म है वास्तव, जिस त्याग के पीछे हमारे मन में और आह्लाद है, दान दे मन हरक विषय के, जिसमें कि हम आह्लादित होते हैं फिर हम दान देते हैं। एक बार नदी और तालाब के बीच में इस तरह की चर्चा छिड़ी थी। तालाब ने कहा कि तू एक दिन खाली हो जाएगी, हमेशा देती रहती उधर जा जा करके समुद्र में अपना सारा पानी देती चली जाती, खाली हो जाएगी एक दिन जरूर। अब लॉजिक तो बिल्कुल ठीक था कि देते चले जा रहे हैं तो खाली हो जाएंगे। नदी ने कहा कि नहीं, मुझे तो दिए बिना चैन ही नहीं, मेरा तो होना ही व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं बहना छोड़ दूं और अपना जल और समुद्र में ना डालने जाऊं। मेरी यात्रा ही शुरू होती है समुद्र तक जाने के लिए। तालाब ने बहुत आर्गुमेंट दिए लेकिन नदी चुपचाप अपना काम करती रही, सारा पानी जितना आता सब समुद्र में जाकर के भेज देती। और जब गर्मी पड़ी तो नदी की धारा भले ही पतली हो गई पर सूखी नहीं, पर तालाब तो सूख गया। जिसने कभी किसी को नहीं दिया उसे तो हमेशा भरा ही रहना चाहिए, देने वाले को रिक्त हो जाना चाहिए, लेकिन देखने में तो उल्टा ही आता है कि देते चले जाते हैं और भरते चले जाते हैं। वास्तव में जो देता है वो ही भरता है, जो ग्रहण करता है और विसर्जन नहीं करता है उसका ग्रहण उसके लिए ही ग्रसित कर लेता है, उसे ही नष्ट कर देता है। हम थोड़ा सा विचार करें कि हम दें तो कितना दें और ग्रहण करें तो कितना ग्रहण करें, इस पर थोड़ा सा विचार करें। ग्रहण और त्याग का एक अच्छा संतुलन यदि हम बना लें तो त्याग धर्म सार्थक होगा। विनोबा कहा करते थे कि H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो ग्रहण तो एक त्याग। ऐसा फॉर्मूला बना लें जैसा H2O का फॉर्मूला है कि ग्रहण दो तो त्याग एक। वैसे सबसे श्रेष्ठ त्याग वही माना जाता है जिसमें कि
सबसे टॉप पर रखा है कि 50-50 वाला मामला है, जितना कमाएंगे 50% अपने लिए, 50% डोनेशन। फिर सेकंड नंबर रखा है कि 25% डोनेशन, और थर्ड नंबर पर रखा है मिनिमम 10% डोनेशन। आचार्यों ने स्वयं ही इस तरह से हमारे त्याग की सीमा निर्धारित करी है कि हम ग्रहण जितना करें उसका कितना भाग हम छोड़ें भी, कितना ग्रहण और कितना त्याग, एक संतुलन हमारे में, जिससे संक्लेश ना हो, जिससे अहंकार जागृत ना हो, अपना कर्तव्य मान करके हम दें। बीज राग फल भोग बे ज्यों किसान जग माही। पहले नंबर का पॉइंट है कि हम ग्रहण कितना करें जिससे कि हमारे लिए आगे का, हम ग्रहण या कि भोग कितना करें जिससे कि आगे के लिए हमारा कुछ सुरक्षित रहे। बीज को कभी नहीं खाता किसान, कितनी भी मुश्किल कड़ी हो जाए जीवन में, लेकिन कभी अपने संचित बीज को, तो भैया आगे के लिए इतना तो बचा करके रखें, उतना ही भोग में लगाएं जिससे कि हमारे थोड़ा बहुत संचित भी होता रहे पुण्य के रूप में। भोग से पुण्य संचित नहीं होता, त्याग से पुण्य संचित होता है, इसलिए भोगें उतने ही जिससे कि पुण्य भी संचित हो सके। इसके मायने हैं कि ऐसा भोग जिसके पीछे त्याग छिपा हुआ है वही हमारे लिए पुण्य का अर्जन करेगा। और दूसरी चीज, भोगें या कि ग्रहण करें इस तरह कि दूसरे का हक न छिने, ये बहुत कठिन मामला है। लाखों रुपया अपने पास रख करके और 10-20 हजार दे देने में इतना अहंकार हमारे भीतर आता है कि देखा हम कितने बड़े दानपति, लेकिन क्या कह रहे हैं कि दूसरे का हक छीन करके और फिर देना, नहीं, इतना ही ग्रहण करना जिससे दूसरे का हक ना छिने। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में, कि नदियों में पानी बहुत आता है तो समझना गंदा ही आता है बारिश के दिनों में। ऐसे ही अगर बहुत अधिक संपत्ति का संचय किया है तो मानिएगा कि वो बहुत पाप से ही हुआ है संचय। चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्माओं को एक्सेप्शन मानना, जिनको की दुकान खोले बिना और 9 निधियां 14 रत्न अपने आप प्राप्त होते हैं, वो एकदम अलग चीज़ है। हम और आपको तो बिना पाप किए धन का संचय या ग्रहण होता ही नहीं है, इसलिए ग्रहण उतना ही करें जिससे कि दूसरे का हक ना छीने। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं घर गृहस्थी में तो जल्दी से समझ में आएगा, हाँ नहीं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे किसी का हक ना छीने। घर में 4 लोग हैं, हम अपनी सुना रहे, चलो अच्छा 4 लोग हैं घर में, माँ हैं, पिता हैं, दोनों भाई हैं, बड़ी बहन तो बहुत पहले चली गई थी, ब्याह हो गया था, 4 हैं, मटर फल्ली आती है, हम लोग बटरा बोलते हैं उसका, आप मटर फल्ली बोलते हैं, घर में आती थी, जब महंगी रहती तो थोड़ी सी आती घर में, 1 पाव आई है, 1 पाव में से छिलके विलके निकल जाते हैं, 200 ग्राम बच गई है, 1 के जुम्मे कितनी कितनी आएगी, 50-50 ग्राम। अब तारीफ इस बात में है कि खाते समय इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माँ तो जो है ओघड़दानी है, बनाने वाला तो देने के लिए ही बनाता है, तो ऐसा नहीं कि माँ का हिस्से का भी मटर हम अपनी थाली में डलवा लें। बस इतना ही करना है, इतना ही ध्यान रखना है कि 4 लोग हैं और 4ों के लिए है ये, इसमें से इतना इतना, एक एक चम्मच, सबको एक चम्मच हो गया तो बस अब नहीं चाहिए, अरे थोड़ा और ले, नहीं चाहिए ही नहीं हमको, हो गया इतना ही तो बहुत है। ये भी फील नहीं कराना कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा हो गया पूरा। क्या इस तरह की कोई फीलिंग अपने भीतर आती है तब मानिएगा कि हमने जो ग्रहण किया है वो वास्तव में दूसरे को बिना कष्ट और क्षति पहुंचाए बिना किसी दूसरे का हक छीने हमने ग्रहण किया। अगर हम ग्रहण करना भी सीख लें तो हमारा त्याग सार्थक हो जाएगा। अनाप शनाप तरीके से ग्रहण करते रहना और फिर बाद में कहना कि ये थोड़ा सा त्याग कर दिया, वो त्याग धर्म में शामिल नहीं होगा। ये ध्यान रखें, जिसने ग्रहण ही ऐसा किया है जिससे किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंची, किसी का हक नहीं छीना। और तीसरे नंबर पर कहते हैं कि ग्रहण कब तक करें, जब तक कि त्याग कर सकें तभी तक ग्रहण करें। अभी एक दिन कुछ लोगों ने नियम लिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, महाराज अगर कोई एक नई चीज ग्रहण करेंगे तो पहले एक निकाल देंगे। दूसरों ने कहा कि ठीक है ऐसा हम कर तो सकते, पर दो ग्रहण करेंगे तो एक निकालेंगे जरूर। इतना भी ठीक है, अगर दो चीजें घर में लाएंगे तो एक निकालेंगे जरूर, तब दो चीजें घर में लाएंगे। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, एक चीज भी अब घर में ज्यादा आएगी तो एक पुरानी वाली निकाल दूंगा, मैं पहले ग्रहण करने से पहले त्याग कर दूंगा। तो ग्रहण कब तक, जब तक कि मैं त्याग करूं तभी तक ग्रहण करूं। जितना ग्रहण करूं उतना ही त्यागूं, ठीक है अगर बन जाए तो, नहीं तो थोड़ा बहुत तो त्यागूं अगर ग्रहण कर भी रहा हूं। ऐसा हम ध्यान में रखें। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक पॉइंट और था कि ग्रहण करें या नहीं करें, ऐसा कभी विचार करते हैं? नहीं, जो चीज भी दिखाई पड़ गई, काम की हो चाहे नहीं काम की हो, सब ले आओ, ऐसा नहीं। ग्रहण करें या नहीं करें इस बात का भी हम विचार अपने मन में रखें कि ये चीज मेरे लिए कल्याणकारी है या नहीं है, इससे मेरा हित सदेगा कि नहीं सदेगा, इससे दूसरे का भी कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर ग्रहण करते समय इस बात का हम ध्यान रखें तो शायद हमारा त्याग भी सार्थक होगा। वैसे तो लिखा यह है कि दूसरे को दें भी तो ऐसा कि जिससे कि उसका कल्याण हो, खुद भी ग्रहण करें तो ऐसा जिससे कि अपना कल्याण, तब त्याग धर्म घटित होता है। दूसरे के काम में ना आए ऐसी चीज दे देते हैं और अपने काम में ना आए ऐसी चीज अपने घर में रखे रहते हैं। बहुत सी चीजें रखी होंगी घर में जो हमारे काम नहीं आती, आज जाकर के जरा देखना तो कितनी सारी चीजें रखी होंगी, कभी काम में नहीं आई, पिताजी के जमाने से रखी हैं, बेटों के काम नहीं आई, लेकिन रखी हैं कोने में। दूसरे के काम आ सकती हैं पर दूं कैसे, ग्रहण तो कर लिया अब काम में नहीं आती है जो चीज, ग्रहण तो किया था जब तब काम में आती थी, लेकिन देख रहे हैं कि उसके ग्रहण में करने कर लेने के बाद भी अब काम में नहीं आ रही, दूसरे के काम आ सकती है तो उसे दे दें, ऐसा होना चाहिए तब हमारा त्याग धर्म सार्थक होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बाबा जी एक राजा को एक फल देने रोज जाते थे और राजा को वो फल एकाध दो दिन तो राजा ने बड़े इंटरेस्ट से बड़े उत्साह से लिया, फिर जब बाबा जी रोज देने जाने लगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया और मंत्री को दे देते थे कि रखाओ वहां पर, अब बाबा जी ने दिया है तो ठीक। बाबा जी से मतलब हमारा सज्जन से मतलब है, बाबा जी तो ऐसा बोल देते हैं कि बाबा जी मतलब आप महाराज जी महाराज जी नहीं समझना, बाबा जी सज्जन पुरुष थे। वो राजा को सलाह देना चाहते थे असल में और रोज एक आम उनको भेंट करने जाते थे, मंत्री को दे देते, तो मंत्री राजा से भी होशियार होते हैं मंत्री, वैसे इसलिए वो मंत्री कहलाते, मंत्रणा और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, वही मंत्री बनाए जाते जो आड़े समय पर भी हमें अच्छी सलाह दे। तो मंत्री जी ने उसे फेंका नहीं, ना उपयोग में लिया, एक कमरे में रखते जाते थे। एक दिन की बात की 6 महीने हो गए, रोज एक दिन भी अंतराल नहीं हुआ और रोज जो है आम भेंट में आ रहा है। राजा को शुरू शुरू में तो ऐसा ही लगा कि क्या रोज रोज आम का फल और दे जाता है, ये क्या चाहता मेरे से, क्या इसका इंटेंशन क्या है, मन में विचार बार बार आता लेकिन राजकाज में वो बात भूल जाते। एक दिन मंत्री से कहा छः महीने बाद कि वो जो एक बाबा आते हैं वो रोज एक फल दे के जाते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, उससे पूछना। तो पूछा मंत्री ने कि आप चाहते क्या हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ मेरा कर्तव्य मानता हूँ कि राजा साहब को कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए, मैं तो भेंट देता हूँ। राजा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बात होनी चाहिए। उन फलों का क्या किया मंत्री, वो तो फेंक दिए होंगे शायद। नहीं महाराज, फेंके नहीं, बाबा दे के जाता है तो कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए, इसलिए सब हमने रखवा लिए थे एक कमरे में, चलें अपन देखें। तो जाकर के देखा तो वो तो सब आम गल गए थे फट करके और खराब हो करके, जैसा भी उनमें होना था, लेकिन उतना सारा ढेर था उसमें से कुछ आम ऐसे मैंने गल करके और नीचे ऐसे बिखर गए थे, जो नीचे नीचे थे वो दब गए थे सब। उसमें से देखा तो जगह जगह से कुछ चमकदार सा दिखाई पड़ा, देखा तो एक एक हीरा हरेक में से चमक रहा है। अरे ये ऑर्डिनरी आम नहीं थे मतलब। अब बाबा जी आए तो राजा ने कहा कि आप मुझे रोज आम भेंट में देते हैं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। उन आमों में से तो हमने देखा कि हीरे निकलते हैं महाराज, आज देखा आपने मेरा देना सार्थक हो गया। मैंने तो सिर्फ आपको पहले दिन से ही यही बताना चाहा था कि ये कितना ही सड़गल जाएगा, लेकिन इसके भीतर का हीरा बहुत चमकदार है, इस बात को आप ध्यान में रखना। मैंने तो ये मैसेज देना चाहा था। दान भी दिया, भेंट भी दी, उपहार भी दिया, तब भी कैसा दिया जिससे कि दूसरे को और एक संदेश मिल जाए। हम लोग संदेश ले नहीं पाते हैं क्योंकि देने वाला दान के साथ अहंकार कर लेता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक अगर कोई देता है तो उससे संदेश तो तुरंत मिल जाता है कि देखो ये व्यक्ति देने के बाद भी इतना विनम्र, अपना सब कुछ देता चला जा रहा है, हमें क्या संदेश देना चाहता है। हमें यही संदेश देना चाहता कि तुम्हारे पास जो अतिरिक्त हो, दूसरे के काम आता हो, उसे हमेशा देते चले जाना। देने वाला यही तो संदेश दे रहा है। गंग कवि और रहीम खान खाना थे। रहीम खान खाना जो है कवियों के बड़े प्रशंसक थे। तो एक बार जो है एक कवि जो गंग कवि थे उनने दो लाइनें लिख करके भेजी के वो देखिएगा, लाइन का अर्थ तो याद है लेकिन लाइन एकदम विस्मरण हो गई। क्या हुआ था कि नहीं ऐसा इसलिए भूल गया मैं, ऐसा हुआ कि गंग कवि के कवित्व से प्रसन्न होकर के और जो रहीम खान खाना थे उन्होंने रातों रात उनके यहाँ पर और बैलगाड़ियों में भर करके असरफियाँ भेजी। तो गंग कवि बड़े चकित हुए कि रात में तो चोर आते हैं लेकिन रात में कोई देने आवे। कहाँ सीखी नवाबजू ऐसी देनी देन, आपने ऐसा देना कहाँ सीखा, ऐसा कुछ कवित्व बना करके और उनके लिए लिखा कि लोग तो जो है बता बता करके देखते हैं, आप जैसा हमने देना वाला नहीं देखा। तब फिर रहीम खान खाना ने भी क्या लिख करके भेजा था उन कवि को, वो बड़ा मार्मिक है कि देन हार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, मैं ये अहंकार कैसे करूं कि मैंने दिया है, इसलिए जब लोग ये कहते हैं कि मैंने दिया तो मेरी दृष्टि झुक जाती है, मेरा मन और शर्मिंदगी का अनुभव करता है। अभी तो हम दे करके बड़ी अकड़ का अनुभव करते हैं कि मैंने दिया, और देना उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन दिया और सिर नीचे झुक गया कि लोग ये ना समझें कि मैंने दिया। मैंने तो दिया क्या, मैंने तो अपना बोझा हल्का कर लिया, मेरे पास तो इतना सारा था जो मुझे मुश्किल में डाले हुए था, अच्छा हुआ कि थोड़ा सा दूसरे ने भी हमारा हिस्सा लेकर के हमारा बोझा कम कर दिया। ऐसा हमारे भीतर अगर त्याग के समय भावना आवे तो वास्तव में वो त्याग धर्म है। त्याग हमेशा आसक्ति को घटाने के लिए किया जाता है पहली चीज़, और त्याग का महत्व है कि हमारे मन को बड़ा संतोष मिलता है। आसक्ति घटती है और मन को बड़ा संतोष मिलता है, और इतने ही नहीं हमें पद प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है, हमें उसकी चाहने की आवश्यकता नहीं कर देते हैं उसके बारे में फिर आसक्ति नहीं होती। अगर आसक्ति होती है तो समझना कि वो त्याग नहीं है। क्या हुआ, हम लोग आचार्य महाराज के साथ चले जा रहे थे, हमने शायद ये घटना सुनाई कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, आपके यहाँ अलग अलग कॉलोनीज में जाकर के, और हाँ सुनाई हो तो सुनाई भी हो सकती, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ध्यान में तो रहता है पर ऐसे अट्रेंडम में ध्यान में नहीं रह पाता। फिर भी अपन फिर से रिपीट हो जाएगी तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में कर देता हूँ कि एक जगह रुकाया गया बंडा में, तो वहाँ पर ठंड के दिन थे और दरवाजे तो टूटे थे और खिड़कियों में कांच नहीं थे, और खप्पर के ऊपर की छत थी तो हवा के लिए बहुत आने की गुंजाइश थी, और 10 बजे रात के बाद जो है तेज़ी से जब ठंड बढ़ी, और उस समय हम लोगों को एक एक चटाई नीचे पाटा, तो हमने आपसे कहा ही था कि अकेले आचार्य महाराज को पाटा पर बिठाल देते थे, बाकी सब नीचे ही बैठते थे ज़मीन में अपनी चटाई बिछा के, और उसी चटाई को ओढ़ना पड़ता था, आधी बिछा लो आधी ओढ़ लो, इस तरह की प्रक्रिया। घास लेने की परंपरा आचार्य महाराज ने हम लोगों को नहीं डाली कि नहीं अभी तुम लोग सब नौजवान हो इसलिए घास की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसमें आराम हो जाता है अपेक्षाकृत। तो अब क्या करें, अब लेटें तो चटाई ओढ़ें तो उधर नीचे से हवा और इधर सिर की तरफ से हवा, आप कैसे करेंगे, चटाई ओढ़ेंगे भी कुछ समझ में नहीं आया। 12-1 बजे अब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन क्या करता है सब। तो यही हुआ कि एक महाराज जी ने बैठे आराम से और चटाई लपेट करके बैठ गए, ऐसे गुड़मुड़ होकर के चटाई लपेट ली, कम से कम नीचे से हवा तो नहीं आएगी, अब ऊपर से ही आएगी, सहन करेंगे। रात भर जो है बैठे बैठे सबने भी वैसे ही किया, सबने लपेट ली और बैठे रहे आराम से। अब सवेरे भक्ति के समय वही वैसे ही कि अपन को तो उतनी साधना नहीं रहती है तो चेहरे पर उतनी प्रसन्नता नहीं रहती ऐसी मुसीबत आने पर, मुसीबत आने पर चेहरे की प्रसन्नता बनी रहे तब बात अलग है, नहीं तो चेहरे पर म्लानता आ जाती। आचार्य महाराज की विशेषता है कि उनकी चेहरे की मुस्कुराहट तमाम मुसीबतों के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती, तो वो ज्यों की त्यों बनी थी। और मुस्कुराते हुए भक्ति के समय आचार्य श्री ने कहा कि क्यों कैसी रही रात में ठंड, बहुत ठंड थी सबने, हमने कहा बहुत ठंड थी, तो क्या ख्याल आया, अब बड़ी कठिन परीक्षा, क्या ख्याल आया, किस चीज का ख्याल आया। तो मैंने बहुत स्पष्ट उससे मैंने कहा महाराज जी बस ऐसे ही लग रहा था कि नीचे बिछाने के लिए एक ठो चटाई और होती तो जरा एक अच्छे से ओढ़ करके सो जाते। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कम से कम छोड़ी हुई रजाई और गद्दे का याद तो नहीं आया, एक चटाई का ही स्मरण आया, त्याग सार्थक हो गया। त्याग करने के बाद अगर उस चीज के प्रति आसक्ति जागृत हो जावे तो वो हमारे त्यागी हुई वस्तु को और त्याग को नष्ट कर देती। ये सावधानी आवश्यक है कि जितनी अनाशक्ति उतना ही त्याग, और या फिर त्याग कर दिया है अगर तो फिर धीरे धीरे आसक्ति भी घटनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम त्याग कर देते हैं बाद में आसक्ति हटती है, या कि आसक्ति कम हो जाने पर त्याग होता है, दोनों ही चीज़ें सावधानी रखने की हैं। ऐसा त्याग और महत्व तो त्याग का ही है, ग्रहण का कभी किसी ने अपन लोग करने लगे हैं अब, हालांकि उसके पीछे भी त्याग का ही भाव है। सम्मान ग्रहण करने वाले का कभी किया हो, मेरे ख्याल से तो व्रत नियम के ग्रहण करने वाले का सम्मान तो किया होगा, लेकिन
किसी ने 1,00,000 रुपए संग्रह किए उसका सम्मान तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। एक सेठ जी थे, हाँ, तो वो सेठ जी जो है बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते थे, ग्रहण तो बहुत करते थे, लेकिन उनके अंदर जरा भी दूसरे के देने की, अपने खाने पीने में भी बड़ी कोताही करते थे। अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे, जोड़ जोड़ के धरते, लोगों में बड़ी चर्चा का विषय था, बड़ी निंदा थी कि कैसा व्यक्ति है, बड़ा कंजूस है। देखो आप, जोड़ जोड़ के रखने वाले को कोई भी हो क्या कहेगा, यही कहेगा। पर उन सेठ जी की एक विशेषता थी, अच्छा कोई कितने भी खराब क्यों ना हो लेकिन एक आध चीज तो अच्छी रहती उसके लिए, और कोई कितने भी अच्छा ना हो, कोई कितने भी अच्छा हो, एक आध खराब चीज भी रहती है उसके भीतर। भगवान को छोड़कर के बाकी कोई परफेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ कि उनकी पूजा भक्ति में बड़ी बड़ी रुचि थी, कहीं पर कीर्तन वीर्तन हो रहा हो तो उसमें पहुंच जाते थे। एक बाबा जी आए तो वो कीर्तन करवाते थे, बढ़िया भगवान का भजन, तो ये उसमें शामिल हो गए, शामिल हो गए। लेकिन कौन पूछने वाला था, इतना धनवान व्यक्ति, लेकिन कोई नहीं पूछता। वहां पर जहां जूते चप्पल उतरते वहां तक भर गया था पूरा, वहां बैठ गए वो। अब लेकिन उस पूजा भक्ति के दौरान बीच बीच में और दान की और त्याग की बाबा जी ने इतनी बढ़िया चर्चा करी कि उनका मन बन गया, जिंदगी निकल गई, कभी मन नहीं बना, उस दिन मन बन गया। और दुकान से लौटे थे वो, सो 100 असरफियां रखे थे चांदी की, और पता नहीं क्या हुआ, और वहां से उठे, लोगों ने तो जगह तक नहीं दी उनको, क्योंकि सब जानते थे कि ये पता नहीं बाबा जी के पास जाके क्या करेंगे, और ये ना कहें कि आशीर्वाद दे दो, 2-5 लाख रुपए और हमारे पास आ जाए। किसी ने जगह, बड़ी मुश्किल में जगह बना करके थैली पोटली हाथ में पकड़े और बाबा जी के सामने जाकर के पूरी थैली और डाल दी कि भगवान आपकी कृपा हो तो स्वीकार कर ले आप। अब बस भैया, जैसे ही ऐसा हुआ और जय जयकार होने लगी वहां तो, और हाथों हाथ, और अलग सब लोग उठ के खड़े हो गए, यहां बिठा लो इनको, यहां बिठा लो सेठ जी को। अब सेठ जी भी बड़े मुश्किल में, सेठ जी ने कहा कि 2 मिनट माइक पर बोलने मिलेगा क्या, बोले मिलेगा, आओ आप तो बिल्कुल, वैसे अगर मांगते तो कोई नहीं बोलने दे रहा था उनको। अब सब कहने लगे, हाँ सेठ जी की बात वैसे कोई ने कभी नहीं सुनी, पर उस दिन हाँ सुनाओ आप। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता था कि इस धर्म की जगह पर भी कम से कम पैसे का सम्मान नहीं होगा, लेकिन यहां भी यही देखने में आ रहा है, मैंने पैसे क्या दिए, मेरा इतना सम्मान होने लगा, लोग जगह देने लगे। अब बाबा जी का नंबर था, बाबा जी ने कहा कि सेठ जी बैठो आराम से, पैसा तो आपके पास 10 मिनट पहले भी था और बहुत अधिक मात्रा में था, तब आप जहां जूते चप्पल रखे हैं वहां बैठे थे, हमने पैसे का सम्मान उस समय भी नहीं किया था, इस समय भी नहीं किया है, आपने जो पैसा छोड़ने का मन बनाया है सम्मान उसका किया है, हमने हमने आपके पैसे का सम्मान करना होता तो हम पहले भी कर सकते थे। हमारे यहां पर हमेशा जब भी सम्मान की प्रक्रिया रखी गई तो त्याग की ही रखी गई, और त्याग ऐसा त्याग जिसमें न संक्लेश है न अहंकार है बल्कि कृतज्ञता है कि सचमुच मेरा इकट्ठा करना सार्थक हो गया कि किसी दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह की कृतज्ञता के भाव से अगर हम त्याग करते हैं तो हमारा मन अत्यंत पवित्र होता है, जीवन उज्जवल होता है, ऊंचा उठता है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल हो, हमारा मन निर्मल हो, और हम धीरे धीरे अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाएं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपना के हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।